घटता से उत्पन्न होती हुई कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मृत्यु है, इसका प्रश्न हो रहा है कि मृत्यु जो है वो घटभाव से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मृत्यु से, माने कि कुम्हार है वो अलग है और मृत्यु है वो अलग है, तो मृत्यु में से कोई उत्पन्न होती है पर्याय तो उसको मृत्यु की पर्याय बोली जाती है, और कुम्हार अगर मिट्टी में से घड़ा बना तो उसमें निमित्त है मगर निमित्त करता नहीं है, निमित्त कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य का निमित्त बना जिसमें है जो वो द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम को कर नहीं सकता है, होता है जरूर मगर कार्य की उत्पत्ति जब होती है एक द्रव्य की तब उसकी हाजिरी वहां होती है, तो उसकी हाजिरी वहाँ होती है उस अपेक्षा से ऐसा निमित्त से कथन भी किया जाता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा तो बना है मिट्टी से मगर कुम्हार की हाजिरी देखते है वहाँ दूसरा कोई हाजिर नहीं है मगर ये ही हाजिर है, तो उसकी निमित्त की हाजिरी की वो साक्षी है वहाँ पे, तो ये परिणाम हुआ है ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। कुम्हार कभी मिट्टी का घड़ा नहीं बना सकता है और मिट्टी का घड़ा जो बनता है वो मिट्टी से बनता है, और गुरुदेव को वहाँ तक उसमें ले जाते हैं, वहाँ तो ये प्रक्रम है कि घड़ा बनता है वो मिट्टी से भी सचमुच नहीं बनता है, मिट्टी का घड़ा घड़े से ही अपने उपादान से बनता है मगर द्रव्य मिट्टी है उसका वो परिणाम है घड़ा, इसलिए वो कुम्हार ने नहीं बनाया है मगर मृत्यु ने बनाया है, ऐसा इसमें कहने में आता है। उसकी तत्व में की उपादान योग्यता से अपन देखे तो परिणाम जो घट रूप हुआ है वो घट रूप घट से खुद हुआ है मगर उसका द्रव्य कौन है, तो के द्रव्य है वो मृत्यु है क्योंकि वो मृत्यु का है खड़ा है, तो इस अपेक्षा से ऐसा बोला जाता है कि कुम्हार घड़ा नहीं बनाता मगर घड़ा मिट्टी से बनता है, ऐसा कुम्हार के स्वभाव यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो, मिट्टी घटभाव से उत्पन्न होती थी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी भी कहते हैं कि यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो जिसने घर को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है ऐसे पुरुष के शरीर आकार घट होना चाहिए, अगर अगर जो कुम्हार ने घड़ा बनाया हो तो कुम्हार का जो आकार है ऐसा ही घड़े का आकार होना चाहिए, अगर वो बनाने वाला है तो उससे उसका द्रव्य से ये द्रव्य बना है इसका परिणाम उससे बना है, तो उसका जैसा आकार है माने कि उसका जो स्वरूप है ऐसा ही घड़े का माने घट का स्वरूप होना चाहिए, तो उसका दोनों का स्वरूप तो पृथक पृथक है, इसलिए उसको ऐसा अहंकार होता है कि ये घड़े को मैंने बनाया, ये मैं नहीं होता तो ये घड़ा नहीं बनता, ऐसा अहंकार अभिमान वो करता है मगर सचमुच दोनों क्रिया पृथक पृथक है, उसकी करने की क्रिया पृथक है और मिट्टी जैसे घड़ा बनने की क्रिया पृथक है, मात्र वो निमित्त की संबंध देख के उसकी हाजिरी देख के उसकी हयाती देख के वो ऐसा कहने में आता है कि यहाँ कोई मान की ये बनकर नहीं था माने की सुना नहीं था मगर ये यहाँ कुम्हार था इसलिए उसके ऊपर उसका आता है निमित्त बने से कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, सचमुच कोई घड़ा कुम्हार बनाता ही नहीं है, वो बना ही नहीं सकता है, मिट्टी में से ही घड़ा बनता है और मिट्टी में से घड़ा बना है वो मिट्टी में से ही सचमुच बनता हो तो वो एक सरखा घड़ा बनना चाहिए गुरुदेव ने बना है मगर वो एक सरखा नहीं बनता है इसलिए उसकी उपादानगत योग्यता से बनता है मगर उस समय वो पदार्थ कौन सा है वो घड़े में तो बड़ा वो मिट्टी है उसमें, तो ऐसा कहने में आता है कि ये मिट्टी का घड़ा है ये सोना का घड़ा नहीं है, उस अपेक्षा से कहने में आता है कि ये मिट्टी का घड़ा है कुम्हार ने नहीं बनाया ये मिट्टी से घड़ा बना है, मगर उस समय जो वहाँ निमित्त रूप से होता है उसको तो ऐसा ही लगता है कि मेरे से ही बना है मैं नहीं होता, तो ये खराब बनता ही नहीं, ऐसी बात कहना चाहते। इसमें उसका हाथ बड़ा बनाने का व्यापार करता है, ऐसे पुरुष के शरीर आकार घट रूप होना चाहिए, परंतु ऐसा वो नहीं होता, परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से इसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। एक द्रव्य का परिणाम का उत्पाद अन्य द्रव्य के उत्पाद से कभी देखने में नहीं आता। अच्छा, उसकी वो अपेक्षा भी नहीं रखता है। निमित्त का नाम ही निमित्त अकुंठित है। निमित्त इसे कहते हैं कि जो उपादान की क्रिया में हस्तगत न करे, उसमें कुछ कर न सके, उसको निमित्त कहा जाता है। अगर निमित्त उपादान की कोई क्रिया हो, उसमें अगर निमित्त से वो कार्य होता हो तो वो उपादान हो जाएगा, उपादान की क्रिया नहीं रहेगी, वो निमित्त की क्रिया वही उपादान की क्रिया हो जाएगी। इसलिए निमित्त सदाए अकुंठित कर लेता है, वो कोई भी उपादान की क्रिया में निमित्त का हस्तक्षेप होता ही नहीं है। घड़ा कितना भी अच्छा बनाना चाहे, कुम्हार जैसा भी बनाना चाहे, मगर वो जैसा बनने वाला है ऐसा ही बनता है। उसका अभिप्राय ऐसा हो कि इस तरीके से अच्छा बनाऊ, इस तरीके से अच्छा बनाऊ, वो प्रयत्न भी करे, फिर भी माटी में जो घड़ा बनने की योग्यता अंदर में शक्ति रूप पड़ी है, वो शक्ति रूप योग्यता माटी रूप परिणाम की है, ऐसा ही घड़ा बनता है। और ऐसा घड़ा बनता है तब वहाँ कुमार होता है, ऐसा कहने में आता है कि ये कुमार ने बहुत अच्छा घड़ा बना दिया, ऐसा तो पहले बना ही नहीं था, मगर सचमुच में उसने कुछ नहीं किया, उसने वहाँ पे मिट्टी में ही उसकी योग्यता पूरी होती है, और वो योग्यता बाहर आती है उसी समय उसका परिणाम होता है, और वो परिणाम जैसा होने वाला है ऐसा ही होता है, तब वहाँ कुम्हार है ऐसा कहने में आता है कि ये घड़ा कुम्हार ने बनाया, ऐसा को देख कर निमित्त से ये हुआ, ऐसा कहने में उपचार करने में आता है। सचमुच घड़ा मिट्टी का द्रव्य से परिणाम बना है, और परिणाम की योग्यता से परिणाम प्रकट हुआ, ऐसा कहना चाहते हैं। और जिसका घड़ा बनाने का व्यापार करता है ऐसे पुरुष के शरीर का घटना के, परंतु ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुमार के साथ स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुमार घड़े का उत्पादक ही नहीं, मिट्टी ही कुमार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई, मिट्टी कुमार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई, मिट्टी कुमार को स्पर्श नहीं करती है, और कुमार सचमुच मिट्टी को स्पर्श नहीं करता है। दोनों द्रव्य पृथक पृथक है, वो क्रिया स्वयं होती है, वो माटी में से घड़ा बना है, कुमार की हाजिरी है, और मिट्टी में से घड़ा बनता है, तो मिट्टी भी कुमार को स्पर्श नहीं करती है। दोनों का अलग परत निमित नहीं थी और निमित ऐसा संबंध बताने में आता है, मगर सचमुच में ये सब अहेतुक क्रिया होती है, वो क्रिया परिणाम की परिणाम से होती है, और परिणाम की परिणाम से क्रिया होती है, उस समय वहाँ जो हाजिर है उसको निमित कहने में आता है। इसमें ऐसा सूच कर रहे हैं, निमित की हाजिरी का ज्ञान कराते हैं, और द्रव्य का परिणाम एक द्रव्य का परिणाम एक उसके द्रव्य से ही होता है, ऐसी सिद्धि करते हैं। निमित की हाजिरी नहीं है ऐसा नहीं है, और निमित से कुछ परिणाम दूसरे द्रव्य का होता है ऐसा भी नहीं है। ऐसा करके यहाँ ऐसा सूच करते हैं कि दो द्रव्य के बीच में कोई वास्तव में संबंध होता नहीं है, निमित नहीं की संबंध कहना वो भी व्यवहार है। सचमुच में अपनी जो त्रिकाली द्रव्य में योग्यता है ऐसा ही परिणाम निश्चिता होता है, तब वहाँ तुम्हारा नीच है, नीच है तो है ठीक है, उसका ज्यादा माने की नीच है, नीच है, नीच है, तो नीच है तो क्या है, अगर नीच है तो है नीच, अभी किस कर रहे थे नीच कुछ करता नहीं होता परिणाम का, दूसरे द्रव्य का परिणाम का करता नीच दूसरा द्रव्य का परिणाम कभी नहीं हो सकता, मात्र हाजिरी सूचित करने का प्रकरण है, बाकी वहाँ जो भी होता है द्रव्य, कोई भी द्रव्य अपना परिणाम उस द्रव्य से भी होता है और दूसरा द्रव्य का कुछ हस्तक्षेप उसमें होता ही नहीं है। और एक ही समझ करना उसका नाम ही दूसरा द्रव्य से दृष्टि उठती है और अपने द्रव्य पर दृष्टि जाती है, इस तरीके का ये प्रकरण है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्यायी है, उत्पन्न होते हुए देखो सभी द्रव्य है वो स्वपरिणाम पर्यायी, अपना द्रव्य का अपने से ही परिणाम होता है स्वपरिणाम पर्यायी, दूसरा द्रव्य से कुछ नहीं होता है स्वपरिणाम पर्यायी से उत्पाद होता है, मिट्टी से घड़ा का उत्पाद होता है, मिट्टी में से घड़ा का उत्पाद होता है, कुमार का जो है वो निमित्त बना है मगर स्वपरिणाम पर्यायी, अपना ही द्रव्य का वो परिणाम है, अपने द्रव्य से ही परिणाम होता है, द्रव्य देवता है माने कि द्रव्य में से ही परिणाम निकलते हैं, उसकी योग्यता अनुसार उसकी उसकी प्रगतता होती है, उसकी योग्यता अनुसार उसका जो परिणाम होता है। इस ऐसे कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर जाएंगे अर्थात अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हुए निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव को निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव के, यदि निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हो तो उनके परिणाम निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के आकार के होने चाहिए, ऊपर दृष्टा में आ गया वही यहाँ बताते कि अगर वो निमित्त से होता हो भूत निमित्त उसने कुछ करता हो तो घड़ा का आकार भी निमित्त जैसा ही होना चाहिए, मगर ऐसा आकार तो दूसरा नहीं है, इसलिए निमित्त से कुछ उपादान में फेरफार हो सकता नहीं है, उपादान उपादान रूप है निमित्त निमित्त रूप है, दोनों को कुछ संबंध सचमुच में है ही नहीं, उपादान से ही देखने की प्रवृत्ति जीव को करनी चाहिए, निमित्त का ज्ञान होता है और उपादान से देखने की उसकी वृत्ति होनी चाहिए, निमित्त का निषेध नहीं होता मन निमित्त जो है वो निमित्त भी अपने में अपनी जगह उपादान ही है, संबंध देखो दोनों का तब निमित्त यानी कि संबंध खड़ा होता है, बाकी उसका द्रव्य का परिणाम उसकी उपादान योग्यता से है, ये द्रव्य का परिणाम अपनी उपादान योग्यता से है। अभी दोनों को जोड़ के विचार करें निमित्त नहीं की संबंध से तो निमित्त नहीं की संबंध खड़ा होता है, वो ज्ञान कराने के लिए है वो सब बातें, मगर ज्ञान करके वो ज्ञान पर से दृष्टि छोड़ के अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि जाने के लिए उपादान वाला ऊपर चढ़ता है और निमित्त वाला हमेशा गिरता है, जो निमित्त को याद करता रहता है उसकी निमित्त पर से दृष्टि कभी छूटती नहीं है, और जो उपादान में आ जाता है चाहे संघ उपादान में आ जाए भिखारी उपादान के भेद में या तो वो भेद को छोड़ के अभेद भिखारी उपादान है उस तरफ चला जाए तो जो परिणाम होता है उससे जो अशुद्धता थी वो शुद्धता का परिणाम आपो आप योग्यता रूप प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हुए निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते स्वभाव से, यदि निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हो तो उनके परिणाम निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के आकार के होने चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद दिखाई नहीं देता, अन्य द्रव्य के स्वभाव किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद नहीं दिखाई देता, एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य का परिणाम देता नहीं दिखता निमित्त होते हुए भी, जबकि ऐसा है तो सब सर्वद्रव्य निमित्त अन्य द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते है, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है, सभी द्रव्य का परिणाम अपने अपने से अपनी उपादान गत योग्यता से होता है, जैसे पानी है, पानी तो पानी है तो पानी का स्वभाव तो शीतल है, शीतल स्वभाव है पानी तो अभी अग्नि का निमित्त मिला उसको, निमित्त तो अग्नि का मिला तो पानी में क्या हो गया, पानी की पर्याय में उष्णता हो गई, तो अभी पानी शीतल था वो पानी
शीतल होने पर भी उष्ण दिखने लगा। हाथ डालते हैं तो क्या है, उष्ण दिखता है पानी। तो अभी पहले तो शीतल था पानी, अभी उष्ण हो गया, तो क्या हुआ कि वो परिणमन बदला होता, शीतल परिणमन में से अभी उष्ण परिणमन हुआ। तो उष्ण परिणमन हुआ किस अपेक्षा से हुआ, तो कि भाई उसको अग्नि का नहीं मिला, इसलिए वो परिणमन क्या हो गया, उसकी पर्याय में उष्ण परिणमन हो गया। अभी वो परिणमन हुआ है उष्ण, वो अग्नि से हुआ है कि वो पानी से हुआ है कि पानी की पर्याय से हुआ है, ये प्रश्न है। अभी उष्णता तो हुई है, वो तो एकदम बराबर बात है, उसमें तो कोई ना ही नहीं हो सकता। उष्ण हुआ है पानी, तो उष्ण पानी हुआ है कि उष्ण पानी की पर्याय हुई है। अभी उष्ण पानी की पर्याय हुई है तो पानी का द्रव्य से हुई है कि अग्नि की निमित्त से हुई है कि अपनी योग्यता से हुई है। निमित्त अग्नि का है वो 100% सही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो निमित्त है, मगर निमित्त से हुआ है वो पानी की पर्याय गर्म निमित है, निमित की कोई नाई नहीं है, मगर निमित है, निमित से पानी की पर्याय उतना हो गई है। अच्छा पानी की पर्याय निमित से उतर नहीं है, अभी द्रव्य से उतना हुई है, द्रव्य तो शीतल है, पानी का स्वभाव तो शीतल है, तो कैसे हुई योग्यता है निमित का समय होता है। पर समय एव पर संग एव संग बदला होती है, उसका संग दूसरी जगह हो गया है, संग करने से उसकी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न हुई है। संग किया इसलिए वो भूखा संग किया उससे नहीं हुआ है, संग करने वो कूद जाता है, उष्णता नहीं है योग्यता समझा। तो ये ऐसा है कि वो पानी की पर्याय उतना हुई और निमित्ता है पानी को, मगर वो उतना था वो अपने अपने से हुई अपनी योग्यता और उस समय भी उसने अपना भीतर स्वभाव को छोड़ा ही नहीं। अगली कोई गलती है उसे पानी डाल दो, अग्नि चली जाएगी, शीतल स्वभाव है उसका, वो शीतलता को अपने को पकड़ना पड़ेगा। सब है पर्याय में, निमित्त में भी संबंध है, पर के संशय यहाँ होता भी है सब, कुमार नीति का संग करता है तो भरा होता भी है, ये सब है परिणाम। परिणाम की स्थिति को अपने को उड़ा देना नहीं है, मगर जरूर उसकी दृष्टि छोड़ना है, उसका ज्ञान करके वहां से दृष्टि उठाना है, स्वभाव का दृष्टि ले जाना है। तो पानी का स्वभाव तो शीतल ही है, उसका हुआ ही नहीं स्वभाव, पर्याय में उष्णता हुई है वो भी अपनी योग्यता से पर्याय में उष्णता हुई है। तब बदलाव क्या बना है, पूर्व पर्याय में तो शीतल था पानी पर्याय, अभी बदलाव क्या बना कि वो उष्ण हो गया, उसके निमित्ता कम किया है उसने, समयवर्ती संग है, समय 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 समयवर्ती संग होता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता है, पिछली पर्याय का दूसरी पर्याय से बिल्कुल संबंध नहीं है। प्रवचन का देख लेना 1992 का 102 में जन्म स्थान वाली बात देख लेना, उसको बहुत विस्तार किया है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय से संबंध नहीं होता, एक द्रव्य का दूसरी द्रव्य से संबंध नहीं होता, एक द्रव्य की पर्याय का दूसरी द्रव्य की पर्याय से सबको संबंध नहीं होता। निमित निमित संबंध कहा जाता है वो व्यवहार है, मगर ऐसा है व्यवहार, ये भी है नहीं है ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है कुछ परिणमन हुआ है मगर उससे नहीं हुआ, अपनी योग्यता से हुआ है। तब वहां के कौन निमित है उसका ज्ञान कराया जाता है, ऐसा इसमें प्रकरण समझ नहीं होता है। पर्सन ये उसका संग किया उसने, वहां उष्णता है यहाँ पानी है, संग माने कि वो दोनों का संग माने एक में थोड़ी होता है, जब अपने को छोड़ के उस तरफ झांकता है तो ऐसा हो जाता है, उसका संशय होता है उसी विष्णु का, ऐसा कहने में आता है। संग माने की अग्नि और पानी की परिया एक में छोड़ी हो गई है, वो तो दोनों स्वतंत्र है। जब यहाँ पर्याय में उष्ण होने की योग्यता प्रकट होने वाली है तब वहाँ उसके पास में अग्नि भी होती है, उसको बोला जाता है परसंग है, वो मिली सबंग ऐसा आया है समझदार नहीं है। तो ये नीलित नैमित्तिक संबंध है ना, वो उससे कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। पर नीलित नैमित्तिक संबंध को कोई निकाल नहीं सकता है, और नीलित से यहाँ उपादान के कुछ होता है ऐसा मानना भी नहीं है, क्योंकि होता नहीं है सब कुछ। नीलित निमित्त है, उपादान उपादान है, और दोनों को स्वतंत्र देखो, दोनों उपादान है। कौन निमित्त और कौन उपादान, वो भी उपादान, ये भी उपादान, सबकी उपादान उपादान उपादान, ये सब जगह हमें तो सब जगह उपादान की दिखता है। ऐसा जिसको विचार करता चलेगी उसका निमित्त पर लग जाएगा ही नहीं, उसको ऐसा ही लगेगा कि मेरी मेरे उपादान से ही मेरी क्रिया हो रही है, दूसरे दूसरे का मतलब ही क्या है, उसका हस्तक्षेप तो मेरे दूसरे का मेरे है, मेरी उपादान की क्रिया मेरे से चलती है। अभी दूसरा चीज है वहाँ वो संग हुआ नीचे हुआ न वो हाजिरी थी, सब होने पर भी देखना उपादान है, सब है कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, मगर देखना नहीं उधर ज्ञान करके फिर उधर से खतक
जाना।
अपने को क्या है कि अपन उसका देखने जा रहे, अपन उसका कम करते हैं करता, अपन निमित्त को देखने जा रहे, निमित्त अपने को बुलाता नहीं है, तुम आओ मेरे पास। अभी जो बात आने वाली है इसमें है 370 तीन सौ गया, उसमें ऐसा कहते हैं कि कोई पदार्थ मुझे देता नहीं तू मेरे पास, मगर ये खुद जाता है। गुरुदेव बोलते हैं कि रसगुल्ला ऐसा कहता है कि तू मुझे चाह, वो नहीं कहता है कि तू मुझे चाह, फूल नहीं कहता है तू मुझको सुन, लीला सुख का वचन निकलता है तो तुझे क्या है, वो तो जड़ का परिणाम है, इससे तेरे को लेना देना नहीं, तू तो चेतन भगवान आत्मा है, जानने का कार्य है तेरा, बस जानन क्रिया तेरी है, करो की क्रिया राजा की क्रिया तेरी हो ही नहीं सकती। वो बंधनकार नहीं, 270 लाख है बंधनकार, उसने ऐसा लिखा है मैं पर जीवों को मार सकता हूँ, पर जीवों को जिला सकता हूँ, पर जीवों को किसी दुखी कर सकता हूँ, जैसे अर्जुन खान के काल में ही ऐसा अर्जुन खान जिनको चल रहा है एक तक को भूलता, ऐसे अर्जुन खान के काल में ही उसकी भक्ति क्रिया खुद की रही है, ऐसा लिखा है। पर्याय की भक्ति क्रिया नायक भाव और ज्ञान गुण ऐसा लेके वहाँ सामने वो हनन क्रिया और नर नारक की पर्याय और ग्रेणी भाव ऐसा उसने कंपेरिजन करके बताया है कि ऐसा होने पर भी तू ज्ञान ज्ञान में पड़े गया है, तेरी भक्ति क्रिया हो, तेरी जानन क्रिया हो, वो जानन क्रिया को पकड़ लिया, ये सब हो रहा है वो पता कहाँ चलता है, वो ज्ञान में पता चलता है, जानन क्रिया में पता चलता है, तो वो जानन क्रिया पता ही रहती है, तो वो मेरी है, ये पदार्थ को भीते जाते हैं, वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कुछ नहीं है, उससे मेरे में कुछ होता नहीं है, मेरी तो मात्र जानन क्रिया है, मैं तो जान रहा हूँ। ऐसा विचार करना अपने को करना है कि उपादान से देखना सीखना है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया है उपादान का, उपादान के देखो विविध से बनते हैं, सर्व से विकास होता है, अपने से होता है, वो बहुत चर्चा करी थी मिश्री ने भी, कितनी चर्चा है तुम्हें, वो गुरुदेव ने कितना स्पष्ट किया, वो संचार की कहती बात नहीं गाथा बताई, लेकिन निमित्त उपादान का प्रकरण तो पूज्य गुरुदेव सिंह जो पूज्य गुरुदेव सिंह से जो खुला है, इतनी स्पष्टता इतनी स्पष्टता और बहुत बारीकी से भी चर्चा की पूज्य गुरुदेव सिंह ने, उपादान ही उपादान है सब जगह, उपादान को बल जहाँ नहीं उसको राह, सभी जगह उपादान उपादान दिखता है हमको, इस तरीके से ही सोच गाथा में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया हो उसको सिद्ध करके फिर प्रयोग की सिद्धि पे चलेगा, इसका निषेध नहीं है और ऐसा व्यवहार है भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर प्रयोजन मेरा कैसे सुख होगा ये समझ लिया चलो अभी क्या करना हो। अभी मेरी व्यक्ति तो दर्जे पर जानी चाहिए, नहीं तो ये सीखने से फायदा भी क्या है। तो कार्य तो ऐसे होता है और कार्य फल के बिना मूल की कोई कीमत नहीं है। परम परिणाम का वो कितना भी सुरक्षित हो, चैतन्य परमात्मा विनायक भाव ध्रुव उठक एक रूप परमात्मा ऐसा ना ऐसा है, मगर अनादि से है वो, तो तुझे कामता क्या हो, तेरी दृष्टि ही ना हो है। तो वो तो द्रव्य तो ऐसे ही ऐसे सुरक्षित देखा है, दर्शन दे ही रहा है, तू दृष्टि तेरी है तो चला जा उपादान, स्वीकार उपादान को देखने का प्रयास कर। वो कब प्रयास होगा कि इधर से ये सब चीजों से दृष्टि छूटेगी, तब जब तक उधर दृष्टि रहेगी, बार 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 एक ही विषय समझने का प्रयास भी करता है। देखो स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय किसका नाम कहते हैं, कि एक बार आप सुनो, एक बार उसको विचार में ले लो सुनिए, फिर बार बार उसको सुनने की जरूरत नहीं रहती आपको, उसी को स्वाध्याय बोलते हैं। ऐसा उसको स्वाध्याय बोलते, एक बार सुन लिया तो फिर वो तो निर्णय में आनी चाहिए वो बात, अगर निर्णय में वो बात आती ही नहीं है और सुनते ही रहते हैं अपन, तो क्या मतलब है उसका, तो कोई वो तो अनंत काल से अनादि से ऐसा ही चल रहा है। तो निर्णय तो होना चाहिए उसको, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक घंटा मेरा गया, दो घंटा गया, तीन घंटा गया है, तो उसने मेरे को मिला क्या, उसने मेरे क्या ग्रहण किया, मैंने वो सोच रहा नहीं है उसको, वो सोच के निर्णय में आना पड़ता है उसको। सब चीजें सब परिणमन स्वाधीन स्वतंत्र तैयार करता है, कोई किसी का परिणमन को खुला सकने वाला जगत में नहीं है, कोई जन्म कोई पर्याय कोई फिरा नहीं सकता, जो जरिए जो पिछड़े जो काले जो बाले जो नीचे जो बोले जो पर्याय पड़े वाली है वही होती है, आगे तुझे कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो ये निश्चित नहीं की समझ की चर्चा है, उसको समझ के उसको ज्ञान करके फिर वहां की दृष्टि अपने स्वभाव को ध्यान कर लो, तभी ये समझा वो सार्थक कहलाया जाता है। नहीं तो ये लोग चलता ही रहता है, ये सुनाने वाले सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, कार्य सिद्धि नहीं हो गए तो क्या काम, क्या काम का चिंती चीज है, अपने पास टाइम बहुत कम है। मुझे गुरुदेव जी बोलते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बढ़ती है, बड़ा होता जा रहा हूँ, मृत्यु की कम ज्यादा है, उनको पता नहीं चलता है, उनको ऐसा है कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मृत्यु की कम ज्यादा है, तो हिसाब नहीं कर रहा है उसका, यहाँ से मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं, कैसी मेरी योग्यता है, कैसे मेरे को निर्णय करना चाहिए, कैसे मेरे काम होना चाहिए, ये बहुत है विचार दशा चलनी चाहिए। तो भाई क्या है, ये सब तो पात्र है, ज्ञानी पुरुषों का उपदेश है, वो सब तो बहुत स्पष्ट हो गया है। देखो विनिंग रूप से कोई कम नहीं है जिनके पास, जो भी समझना है ऐसे सब नहीं है उसके पास, आचार्य भगवान का शास्त्र है, गुरुदेव की वाणी है, विद्वानों की स्पष्टता है, सब निमित उपलब्ध है, उपादान जागरूक होना चाहिए बस, और उपादान अपने पास है, निमित तो दूर है और अपने में अपनी जागरूकी नहीं आती, काम तो बहुत करना है, ये देना चाहते हैं अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है, ऐसा होने से सर्व द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन न करते होने से निमित अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्व द्रव्य के परिणामों के उत्पादक हेतु नहीं, सर्व द्रव्य ही निमित अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से ही उत्पन्न होते हैं। कि दो द्रव्य की पृथकता बताते, अपना द्रव्य का अपना परिणाम है, दूसरा द्रव्य का दूसरा परिणाम है, एक दूसरा संबंध देखे तो जो क्रिया बनती है इसमें जो बाह्य पदार्थ की हाजिरी है उसको मिनी ट्रेन में आता है, ऐसा इसमें चीज करके बताना ये चाहते हैं कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। अपने में जो राजा जी भाव उत्पन्न होते हैं उसका कोई कर्म होने पर भी वो कर्म अपने राजा जी भाव को उत्पन्न कर सकता नहीं है। सब अपने अपने में स्वतंत्र है, किसी का किसी में लेना देना कभी होता ही नहीं है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव के राजा जी का उत्पादक पर द्रव्य को नहीं देखते मानते कि जिस पर कोप करे उसका भावार्थ पढ़ लेता हूँ। आत्मा को राजा जी उत्पन्न होते हैं तो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम है। यदि इसे नहीं से विचार किया जाए तो अन्य द्रव्य राजा जी का उत्पन्न करने वाला नहीं है, अन्य द्रव्य उनका निमित्त मात्र है, क्योंकि अन्य द्रव्य के गुण पर्याय अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं करता, यह नियम है। जो यह मानते हैं ऐसा एकांत ग्रहण करते हैं कि पर द्रव्य ही मुझ में राजा जी उत्पन्न करते हैं, वे नई विभाग को नहीं जानते, माने कि नई से सोचना चाहिए उसको, इसमें कौन सी नहीं लगती है, इसमें कौन सी नहीं लगती है, व्यवहार में ये सब प्रकरण है, अनंत नहीं है एक ज्ञान में, और वो श्रुत प्रमाण रूप होती है, श्रुत ज्ञान में नहीं होती है, मगर वो उसमें अनंत नहीं है, उसमें कम से कम निश्चय और व्यवहार नहीं, उसका ज्ञान तो सभी जीव को होना चाहिए, तभी खत्म नहीं सही हो सकती है। नहीं तो क्या होगा कि नए ज्ञान का थोड़ा भी अभ्यास नहीं होगा तो क्या होगा कि ये एक द्रव्य दूसरा द्रव्य अलग अलग है, उसमें क्या कैसी नहीं लगती है, कौन सी नहीं लगती है, ये सब प्रकरण वो तीर्थंकर भगवान की सूची की गाथाएं आ रही है ना 31, 32, 33, उसके पहले ये सब नई विभाग का प्रकरण भी आया है उसमें, और 43 नई जो प्रवचन साधी है उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन है, और 43 शक्ति के प्रवचन, और शक्ति का प्रवचन और नई का प्रवचन दोनों साथ में सुनना चाहिए। तब पता चलता है कि शक्ति का परिणाम की स्थिति बताते हैं, उसी समय नई से भी क्या उन्हें विचार करना चाहिए उसको, तो कभी जीव स्वच्छ नहीं होता है। और मैं ये बोलता हूँ कि जिसके ऊपर गुरुदेव है वो कभी स्वच्छ नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला, जो गुरुदेव को रोजाना सुनता है, क्योंकि उसमें सब बात है, कभी भी उसको सुनने वाला कहीं भी फंसने वाला नहीं है। ये एकदम आप जो जो लोग नहीं सुनते हैं वो सुनने लगे, क्योंकि उसको सुनते बिना कुछ पता नहीं चलेगा शास्त्र में क्या कहना चाहते हैं। बहुत अपेक्षाओं से भरा हुआ है शास्त्र, कोई भी परमात्मा निकाल लो बहुत अपेक्षा है, अपेक्षाओं का ज्ञान भी सबने जीव को नहीं होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो फंस जाता है। इसलिए गुरुदेव का प्रवचन में जो बात आती है उसको एकदम बराबर रुचि पूर्वक सुनने से वहां से ग्रहण करके उसमें से माल निकाल लो, इसमें क्या किया, इसमें क्या कहा, इसमें क्या कहा, इसमें क्या कहा, तो पता चलेगा कि ये शास्त्र का मर्म ज्ञानियों के हृदय में होता है। शास्त्र शास्त्र में शास्त्र का मर्म नहीं है, ज्ञानियों के हृदय में होता है, और वही निकाल सकते हैं कि ये शास्त्र में क्या कुंकुम आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य कहना चाहते हैं। इस तरीके से गुरुदेव को सुनना बहुत जरूरी है। और अभी तो क्या है, बहुत सा साहित्य हो गया, अक्सर प्रवचन छप गए तो समझ में नहीं आता है, गुरुदेव क्या बोलते वो नहीं समझ में आता है, वो सब बातें निकल गई। सामने शास्त्र है, प्रवचन चलते हैं, आप सुनो और एक एक पॉइंट जो अगत्यता आए उसको नोट करो, नहीं समझ में आए तो जिसको पता है उसको पूछो, मगर गुरुदेव का प्रवचन से निचोड़ निकालो। वो अभी भाई साहब ने भी बोला ना कि अपने पास आध्यात्मिक पुरुष जो ज्ञानी पुरुष अपने पास वही है, और उसकी बात जो है उसमें बहुत मर्म है, बहुत मर्म है, तभी स्पष्टीकरण आ गया है। इस तरीके से सोचना चाहिए, वे नई बात को नहीं समझते, वे मिथ्या दृष्टि है, यह राजादिक जीव के तत्व में उत्पन्न होते हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, ऐसा मानना सम्यक नाम है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राजद्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें, इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति उसमें अन्य द्रव्यों पर क्यों कोप करें। राग द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है, अन्य द्रव्यों पर आरोप हम क्यों दे रहे हैं? वो तो मेरे अपराध से ही राग होता है और मेरे निरपराध से ही विकराग का प्रकट होता है। ऐसा कहते यहाँ ये गाथा पूरी करते हैं। अभी इसका श्लोक भी है और बाकी की गाथाएं भी है, मगर श्लोक अपन एक बार ले लेते हैं, बाकी की गाथा तो अभी रह जाएगी। अब इस अर्थ का फलत रूप काव्य कहते हैं, फलत बोलिए। आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है उसमें पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है, वहाँ तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलाता है। इस प्रकार विदित हो और अज्ञान अस्त हो जाए, मैं तो ज्ञान हूँ, मेरा जो भी परिणाम होता है मेरे से होता है, उसमें दूसरा द्रव्य कुछ करता नहीं है, उसमें वो स्वयं अपराधी खुद अपना अज्ञान है, अज्ञान से ही ये सब हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि इस प्रकार विदित हो और अज्ञान अस्त हो जाओ और मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी उसकी सोच चलने लगती है तो दूसरा द्रव्य एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य के साथ संबंध उसका जरूर छूटता है, क्योंकि दूसरा द्रव्य में ज्ञान नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। तो ज्ञान मात्र कहाँ है, क्योंकि मेरे भी ज्ञान बचता है, द्रव्य में ज्ञान, गुण में ज्ञान, उसकी पर्याय में ज्ञान, सभी जगह मुझे तो ज्ञान 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 ही दिखता है, सर्वत्र ज्ञान का ही चमकना है, सब जगह मुझे तो ज्ञान ही दिखता है, ऐसे में ज्ञान मात्र हूँ। ऐसा जिसका विचार चलता है वो पर द्रव्य से प्रकट होके अपना द्रव्य का आरूप होके उसकी दृष्टि वहां जाके उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा ये प्रकरण अपना थोड़ा अधूरा हो गया है, इसलिए दूसरी बार बड़ी मौका मिलेगा तो ये प्रकरण समाप्त करेंगे। यहाँ से जो भी ये चार दिन में बात कही गई है इसमें आपको जो अच्छी लगी हो वो आपकी है, आपको अच्छी नहीं लगी हो वो मेरी है। इस तरह से समझ गए सभी मोक्षार्थी मोक्ष मार्ग में प्रयास है, इसी मंगल।